डबल लाइट स्थिति के इस भट्टी के सायंकालीन सत्र में आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश भाई जी का तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है। स्वागत है सर। आदरणीय भाई साहब 1986 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और 1995 से ही आप ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं समझती हूँ हम हर एक को कभी न कभी ट्रॉमा सेंटर में काम तो पड़ता ही है। आदरणीय भाई साहब वर्तमान समय ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी और फिजिशियन डिपार्टमेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट आप पूरी देखरेख करते हैं और भाई साहब ने यज्ञ में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है योग के प्रयोग का। जो कोरोनरी एट्री डिजीज वाले होते हैं, हार्ट डिजीज वाले होते हैं, जिनको डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी सजेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों पर आदरणीय भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया योग का प्रयोग का और बिना कोई सर्जरी कराए हार्ट के आर्टरीज खुल गए। आपके नेतृत्व में 12 वर्ल्ड कांग्रेस फॉर क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी ऑर्गेनाइज किए गए हैं 2006 से 2017 के बीच, जिसमें लगभग 14,000 कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस ने लाभ लिया है और वर्तमान भी रेगुलर बेसिस पे कैट पेशेंट्स के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें युगल सहित जो भी मरीज होते हैं युगल सहित आते हैं, एक हफ्ते के लिए रुकते हैं और इतना अच्छा मार्गदर्शन आदरणीय भाई साहब के द्वारा उनकी पूरी टीम के द्वारा सबको प्राप्त होता है कि बीमारी से तो उनको निदान मिलता ही है लेकिन सबसे बड़ी बात है वो बाबा के पक्के बच्चे बन जाते हैं। तो ऐसे योग के बहुत सुंदर प्रयोग करने वाले एक महान योगी आज हमारे मध्य है तो हम आदरणीय भाई साहब से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे चित्त चैन कैसे प्राप्त करें। आदरणीय भाई साहब
ओम शांति। आज इस सीजन में पहली बार क्लास फुल है। अभी तक पहले 100 लोग आते थे, 100 के बाद फिर 125 हुए, 150 हुए, आई थिंक इतना भी अभी 200 है, 200 हाँ लगभग, नहीं तो 200 के लगभग क्लास होती ना, बट्टी होती थी। पहली बार ये क्लास फुल है ना इस सीजन में, हर हफ्ते आना होता है ना तो पता लगता है कैसे। चलिए आज का विषय है हमारा चित्त चैन कैसे पाए। इसी विषय पर चिंतन करने से पहले चलते हैं एक बार उस परमधाम में, उस पावर हाउस के पास। चलिए अपने इस देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को डिटैच कर लीजिए। मैं शरीरी आत्मा परमधाम घर में उस पावर हाउस शरीरी बाप से कंबाइंड हो जाइए, उससे कंबाइंड मन बुद्धि को समेट अशरीरी आत्मा बन परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाए। ओम शांति। हम सभी ने गीत सुना, कौन सा गीत सुना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल जहां चित चैन पाए। क्या चित हमारा चैन में नहीं है, क्या चैन में है कि नहीं है, बेचैन है, वैसे बेचैन रहता है। चित क्या चीज है, कहते जैसा चित वैसा चिंतन। हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, क्या मुरली सारा दिन अंदर याद रहती है, क्या मुरली अंदर बसती रहती है। जो चित है ना, जो चित्त में है वो चिंतन में है, चेतन मन में उसी मनुष्य का चिंतन चलता है जो हमारे चित्त में होता है। और आज की मुरली में भी था ना बाबा ने, आज के पहले पेज पे था, परमात्मा कौन है, सत्य है, चैतन्य है और सच्चित कहते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। देवताओं को भी क्या कहते हैं? देवी देवताओं को सच्चित आनंद स्वरूप। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जिसके दिल में सत्य है उसका चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा का दिल सत्य है, देवी देवताओं के दिल में सत्य है, तो उनका चित्त सदा आनंद स्वरूप है, राइट। आजकल लोग अपना नाम लिखवाते हैं स्वामी सन्यासी, क्या लिखते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वामी जी कहते हैं ना, स्वामी सच्चिदानंद 1008 या 108 ऐसे लिखते हैं ना, तो सच्चित आनंद, राइट। तो दिल में अगर सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है। अगर दिल में असत्य है तो क्या होगा? चित्त हमारा अशांत, चंचल और बेचैन है। चैन शब्द में क्या मतलब है? चैन का क्या मतलब है? चैन का क्या अर्थ है? चैन माना सुकून भी कह सकते हैं। चैन माना, चैन किसको रहेगी? जो कुछ तन में, मन में, धन में, दुनिया में चल रहा है उसे साक्षी दृष्टा है, राइट। जो फंस गया उसका चैन खत्म हो जाएगा, नहीं? या से स्थित प्रज्ञा भी कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञा, राइट। जो भी परिस्थितियां बदले, अंदर तन में बदले, मन में बदले, धन में बदले, संबंध संपर्क में बदले, दुनिया में बदले, किंतु मैं उससे साक्षी दृष्टा हूं। जो साक्षी दृष्टा है वो क्या है? उसके चैन है उसको, राइट। सो क्या है? उसका चित्त चैन में है। जो पवित्र है वो चैन में है। अपवित्र कभी भी चैन में, जिसके दिल में दिल पवित्र नहीं है उसका चित्त कैसा होगा? बेचैन होगा ना। जो शांत है, जिसमें शांति है, वो चैन में है, राइट। शांति में ना, शांति की डेफिनेशन क्या है बताओ? शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहने को शांति कहते हैं। हमारे वर्तमान के विचार आ रहे हैं सिर्फ, ना पास्ट के आ रहे हैं ना भविष्य के आ रहे हैं। 90% थॉट्स कहां से आते हैं? या तो पास्ट से आते हैं, भविष्य से आते हैं। तो 90% थॉट कहां से आ रहे हैं? पास्ट से आ रहे हैं, भविष्य से आ रहे हैं। 10% थॉट ही वर्तमान से आ रहे हैं, राइट। कहते ना 30 से 40 विचार चलते हैं एक मिनट में, तो उसमें 30 से 40 जो 90% विचार कहां से आ रहे हैं? पास से या भविष्य से आ रहे हैं। 10% वर्तमान से आ रहे हैं, तो उनको कट कर दो तो क्या हो जाएगा? 10% विचार आ रहे हैं, चार ही विचार आ रहे हैं, 3-4 विचार है, उसे शांति कहते हैं। जिसमें प्यार है, सबके प्रति स्नेह है, उसका चित्त चैन में है। किसी के प्रति थोड़ा भी क्रोध है, थोड़ा भी डिसलाइकिंग है, तो क्या है? किसी के प्रति लगाव है, झुकाव है, प्रभाव या टकराव है, तो चित्त बेचैन हो जाता है, राइट। तो चैन माना जो साक्षी दृष्टा है, पवित्रता है, शांति है, सबके प्रति सच्चा स्नेह है, जिसके पास अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में है, जो आनंद में है और 8 शक्तियों से भरपूर है, वो क्या है? उचित चैन में है, राइट। तो चैन में क्या आ गया? 7 एनर्जी आ गई, नहीं आ गई? अर्थात जो सत्व प्रधान है वो चैन में है। इसलिए कहा जाता है देवी देवता क्या है? उनका चित्त चैन में है। सच्चित आनंद स्वरूप का ना, परमात्मा का चित्त कैसा है? सदा चैन में है, राइट। मनुष्य का चित्त कैसा है? बेचैन है, राइट। नहीं, अब जब हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हुआ ना, क्योंकि सब लोग जो आते हैं ना, पूछते हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं, अधिकतर हार्ट अटैक होते हैं उनको हैं जब ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, ज्यादा रीजनिंग करते हैं ना, लॉजिकल होते हैं, बात बात पे क्वेश्चन करते हैं, हर बात में शक होता है उनको, है ना, तो या सेंसिटिव ज्यादा होते हैं उन्हीं को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, जल्दबाजी ज्यादा करते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। तो आते ही वो पूछते हैं सबसे पहले कि भाई ये चित्त क्या है, ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है, तो बड़े सारे क्वेश्चन लोगों के होते हैं। अगर आप उनके लॉजिक को सिद्ध ना करो ना, तो क्या होता है? मानते ही नहीं है। कहते हैं हमारे 2 ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है और राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन है, भावनात्मक ब्रेन है, भावना इमोशनल ब्रेन है। जो हम ज्ञान है ना हमारा, ज्ञान का क्या, ज्ञान का आधार अधिकतर हमारी भावना है, क्या ना, भावनाओं के आधार पे हमारा पापा से याद होते हैं ना। किंतु उनको समझ में नहीं आती। हमारे भाई बहन क्लास कराते हैं, भावना प्रधान क्लासेस कराते हैं, राइट, तो उनको समझ में नहीं आती, कहते फालतू बात है ना। जब उनका, इसलिए पहले लेफ्ट ब्रेन को हम लॉजिक को अगर हम उनको संतुष्ट हो जाए ना, लेफ्ट ब्रेन संतुष्ट हो जाए, फिर उनकी भावनाएं जागृत होती है, फिर वो भी इक्वली दिल से, सच्चे दिल से भगवान को याद कर सकते हैं, भावना से याद कर सकते हैं, राइट। नहीं तो करंट उनको समझ नहीं आएगी, उनके ऊपर से बुद्धि से बाहर जाती है। तो तब मैंने था, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था तभी, तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड, चित्त माना बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड, चित्त का मतलब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, हिंदी में क्या कहेंगे, अवचेतन मन, राइट, तो अवचेतन मन कहेंगे। और फिर होता है चेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो चित्त सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर चेतन मन कार्य करता है। चेतन मन में क्या चलता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है उसके आधार पर, चित्त के आधार पर चिंतन चलता है, सबको चेतन मन में, चेतन मन में जो भी वर्तमान में चल रहा है उसके आधार पर हमारा चिंतन चलता है। तो अब चित्त क्या है उसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें हैं इस पे, विदेशियों की, जोसेफ मर्फी की हैं, और बहुत सारी किताबें हैं, कई सारे वॉल्यूम्स हैं, तो मैंने पढ़े। किंतु जब मैं बाबा की मुरली पढ़ता था तो मुझे वो गलत लगती थी सारी बातें, जो किताबों में लिखी है ना वो सारी बातें गलत लगती थी, मैं कन्फ्यूजन, क्योंकि हमने ज्ञान, बाबा के ज्ञान को बहुत से समझा भी था, कई बार गुलजार दादी के द्वारा संदेश भी आए थे कि हार्ट के प्रोग्राम के बारे में, हार्ट की बारे कैसे कैसे प्रोग्राम हुआ, कैसे कैसे हुआ, या मेरी हार्ट की बीमारी जब मुझे हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुई तो बाबा ने उसका मैसेज दिया कैसे इसको ठीक करना है, तो बाबा ने विधि बताई राजयोग की, तो उस विधि से राजयोग किया तो उससे मेरा हार्ट ठीक हो गया। तो अब उस बीच में मतलब सारे बहुत सारी उन दिनों बड़ा कन्फ्यूजन सा रहा कि सबकॉन्शियस माइंड, दुनिया वाले क्या कहते हैं, हम बाबा क्या कहता है, पर बाबा का भी समझ में नहीं आ रहा था बाबा क्या कह रहे हैं, है ना, तो इतना क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने एक बार दादी जी को कहा, गुर्जर दादी जी को कहा कि दादी जी मुझे ना ये सबकॉन्शियस चित्त के बारे में ना, बाबा ने कभी कभी वर्णन तो किया है चित्त के बारे में, किंतु उसकी गहराई क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है। जो दुनिया वाले कहते हैं वो चित्त अलग है, हमारी भाई बहन क्लास कराते ना वो भी दुनिया वाली बात बताते हैं, दुनिया वाली बातें ही जो दुनिया किताबों में बात लिखी ना उसी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना, बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसे है वैसे है, पर बाबा जो कहता है वो कुछ और है, उसमें कंट्रास्ट है बहुत बड़ा। वो कहते सबकॉन्शियस, चेतन मन से ही सबकॉन्शियस माइंड बनता है, जबकि बाबा कहता है दिल से कॉन्शियस माइंड, दिल से सबकॉन्शियस माइंड बनता है। सच्चिदानंद का ना दिल के आधार पे हमारा चित्त बनता है। तो बाबा ने मैसेज दिया, बच्चे ये जो दुनिया वाले हैं ना, जो भी वैज्ञानिक हैं या जिन्होंने किताब लिखी है, वेस्टर्न यूरोप वासियों ने लिखी है किताब, तो उनको ना तो आत्मा का पता है, ना तो परमात्मा का पता है, ना आत्मा परमात्मा के संबंध का पता है, ना तो ड्रामा का पता है, कर्म सिद्धांत का पता नहीं है, कितने साल की साइकिल है वो भी उनको पता नहीं है, कर्म सिद्धांत की क्लैरिटी क्या है। इसलिए उनका लिखने का आधार, उनका मन के सब सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन के बारे में जो लिखा है वो उनका उस आधार पे है, उन्होंने उसको विजुलाइज किया है, इमेजिन किया है, उसके आधार पे उन्होंने लिखा है। हालांकि वो सिद्ध करके अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे अच्छे लोग कन्विंस भी कर देते हैं, उससे कुछ समाल जैसे रिद्धि सिद्धि होती ना, कुछ समय के लिए फायदा भी मिल जाता है, किंतु जो बाबा जिस विधि से करना चाहते हैं, हमारा पूरा जैसे बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आनी चाहिए ना, होनी चाहिए कंट्रोलिंग, हम जो सोचे वही हो जाए, होता है क्या, होता है, जो हम सोच सत्य में ऐसा होता है, हम जो सोचते हैं वही हो जाता है, ऐसा होता नहीं होता, हर संकल्प सिद्ध होता है ना, हर संकल्प सिद्ध है, इसे कहते हैं कोई सत्युग में अप्राप्त नहीं गई वस्तु देवताओं खजाने में, होनी हमारे में भी लिखी, तो ब्राह्मणों के खजाने में भी ऐसे लिखा हुआ है, किंतु ब्राह्मणों के पास क्या होता है, वो बाबा से कंबाइंड है तो उनका भी ऐसा हो जाए, किंतु होता नहीं है, निरंतर कंबाइंड रहते नहीं है। तो फिर बाबा ने इसके बाद में क्लियरिटी की कि बच्चे बाबा ने जो कहता है ना उसका एकदम उल्टा है दुनिया वालों की सोच ना, अगर उस विधि से योग करोगे तो कभी बाबा के नजदीक नहीं पहुंच सकेंगे। तो अभी हमको समझना है कि जो बाबा कहता है ना चित्त क्या है और चिंतन कैसे चले, तो दिल में जो होता है ना, देखो एक तो हमें क्या बाबा ने एक बात कहते बताई थी कि जो हमने 63 जन्म में पाप कर्म किए हैं राइट, वो उसका उसका महामंत्र क्या है, उसको मिटाने का या जलाने का महामंत्र क्या है, मन मना भव है ना, और मन मना भव का यंत्र क्या है, मन मना भव का यंत्र क्या है, क्लियर बुद्धि, क्या है मन मना भव करने के लिए क्या चाहिए हमको, क्लियर बुद्धि, और इसका मेन स्विच कौन सा है, क्लियर बुद्धि का भी मेन स्विच कौन सा है, सच्ची दिल साफ दिल राइट, क्या है ये बाबा का मैसेज था। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप कर्म है, बहुत पाप कर्म चढ़े हुए हैं, उन पाप कर्मों का बोझा सिर पे बहुत है राइट, और उनको मिटाने का मंत्र कौन सा मैंने दिया तुमको, महामंत्र, कि तू कहां से वो महामंत्र कौन, इस मन मना भव मना, हम मन के चार एस्पेक्ट होते हैं ना, इंग्लिश में कहते टीम, थॉट्स माना संकल्प विचार, दूसरा भावना माना इमोशंस, तीसरा एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और चौथा स्मृति माना मेमोरीज। तो टीम बन गया ना, टीम संकल्प भावना वृत्ति और स्मृति। तो हमारे चेतन मन में विचार कैसे पैदा होते हैं, किस आधार पर पैदा होते हैं, तो मनमना भावना हर विचार में, हर भावना में, हर वृत्ति में और हमारी हर स्मृति में क्या हो, बाबा हो। मनमना भाव का क्या क्या है, उसमें बाबा हो, हमारे हर विचार में, हर भावना में, हमारी हर हर वृत्ति, वृत्ति में ना नजरिया दृष्टिकोण, हम हर समय क्या देखें, हर समय क्या देख क्या समझे, बाबा की बताई हुई बात को समझे कि हम सब कौन है, हम आपस में एक बाप के बच्चे हैं, भाई भाई, हमारी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए दूसरे के प्रति, आत्मा भाई भाई का वृत्ति होनी चाहिए राइट, है ना, रूहानी वृत्ति होनी चाहिए, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल होना चाहिए, और उसमें रहकर जो कर्म करेंगे तो रूहानी स्मृति बन जाएंगे, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, ज्ञान के स्मृति स्वरूप, पवित्रता के स्मृति स्वरूप, शांति के स्मृति स्वरूप, सच्चे स्नेह के स्मृति स्वरूप राइट, ऐसा हो नहीं, अतिद्र सुख के स्मृति स्वरूप, आनंद के स्मृति स्वरूप, शक्तियों के स्मृति स्वरूप, मतलब हमें फिर याद नहीं करना पड़ेगा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, अभी तो याद करते हैं ना बार बार क्या करते हैं, जब भी बैठते हैं ऑटोमेटिक रहता है आपको कि हमें बार बार संकल्प करना पड़ता है मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, है ना, ऑटोमेटिक हुआ क्या, स्मृति स्वरूप तो नहीं बने, मतलब वो तो वातावरण की वजह से हुआ ना, पर ऑटोमेटिक तो नहीं हुआ ना अभी तक, ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो रिकॉर्ड तो हुआ नहीं। तो हमारे बनमना भाव कहते हैं कि हमारा हर संकल्प क्या हो, बाबा और बाबा की मुरली, हर संकल्प में बाबा की याद और बाबा की मुरली हो, मुरली माना श्रीमत, बाबा और बाबा की, दिल में बाबा की याद और मन में बाबा की श्रीमत, हर विचार बाबा की श्रीमत पर हो, हमारी हर भावना बाबा की श्रीमत पर हो, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना, हमारी वृत्ति सबके प्रति रूहानी आत्मा भाई भाई की हो, हमारी दृष्टि सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हो, हमारी कृति सुख देना सुख लेना, सबसे सुख लेना सुख लेने सुख देने की वृत्ति हो, और स्मृति क्या हो, सातों एनर्जी के स्मृति स्वरूप बने राइट। तो मन मना भाव तभी हो सकते हैं जब हमारी बुद्धि कैसी हो, तो बुद्धि ही सोर्स है किसका, संकल्पों का, मतलब वही बात होती है ना, चेतन मन का आधार क्या है, चित्त है ना, तो जैसा चित्त वैसा चिंतन, तो चित्त का आधार, उसका चिंतन चेतन मन का आधार क्या हुआ, क्लियर बुद्धि, और क्लियर बुद्धि का आधार क्या है, सच्ची दिल साफ दिल राइट। अब हम समझते हैं कि बुद्धि तो मन तो समझ गया, चेतन मन में चार बातें हुए, तीन संकल्प भावना वृत्ति स्मृति, अब बुद्धि जो होती है ना, आत्मा के तीन सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, तो मन के बारे बताया, अब बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट हैं, ऐसे मन के चार एस्पेक्ट है ना, ऐसे बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट है, पहला है दिल, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, और अंतरात्मा भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, राइट। चेतन में हम अपने को अभी क्या समझ रहे हैं, चेतन माना वर्तमान में अपने को हम क्या समझ रहे हैं, क्या समझ के कार्य कर रहे हैं, तो चेतना जैसे होता ना एक शूटिंग बोर्ड होता है ना, जहां हम शूटिंग करते हैं, आर्चरी करते हैं ना, तीर कमान से बीच में एक बिंदु होता है, उसके आसपास एक सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, जो पहला सर्कल है ना उसको दिल कहते हैं, राइट। अगर उसमें हम शूट करें तो कितने नंबर मिलते हैं, 10 out of 10, राइट। तो ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, वो जो पॉइंट है जहां हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जंक्शन है, वो आत्मा की सीट है। आत्मा से जो सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं इमर्ज हो रही है, वो सातों एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर है, वहीं पर है दिल। उसे इसे दिल, इसको दिल नहीं कहते, ये तो बॉडी का दिल है, शरीर का दिल है, ये तो 70 बार धड़कता है ना, 70 बार अंदर सिकुड़ता है फैलता है, इस दिल में कोई रह सकता है क्या, कोई रहे तो क्या होगा उसको, 70 बार बाहर जाएगा, 70 बार अंदर आएगा, नहीं, और अगर गुस्सा आ गया तो 100 बार हो जाएगा, फिर 100 बार अंदर बाहर होगा, और खून में नहाया रहेगा, चारों चैम्बर में खून ही तो है, तो खून में ही नहाना पड़ेगा उसको तुम्हें, इस दिल की बात नहीं है। कौन से दिल की बात है, दिल एक मंदिर है, दिल ही तो है, दिल की मानता ही नहीं, कौन सा दिल है, ये आत्मा का दिल है। तो चेतना में हमारे क्या है, दिल में क्या है, तो पहला आस्पेक्ट है दिल, दूसरा आस्पेक्ट है विवेक, जिसको हम थर्ड आई ऑफ विजडम भी कहते हैं, सत्य को परखने की शक्ति। हमारे अंदर 63 जन्मों के पाप कर्म भरे पड़े हैं ना, आत्मा में तो है, सॉफ्ट कॉपी आत्मा में है और संस्कारों के रूप में, और हार्ड कॉपी कहाँ है, ब्रेन में भी है ना, जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, तो उस ब्रेन में भी सेल्स में भरा पड़ा है ना, 100 अरब न्यूरॉन्स है, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है ब्रेन में, उन सब में मेमोरी, जो जैसी आत्मा आती है ना, वो ब्रेन के सेल्स में मेमोरी डाउनलोड हो जाती है, उसके हिसाब से हमारा कर्म होता रहता है, फिर दुनिया में भी बाहर क्या भरा पड़ा है, नेगेटिव भरा पड़ा है, तो हमारी जो संकल्प के अनुसार, फिर थर्ड आई विजडम, तो हमारे अंदर भी असत्य भरा पड़ा है और बाहर भी असत्य है, उन हजारों असत्य, लाखों बिलियंस ऑफ असत्य में से सत्य एक या दो होते हैं, उस सत्य को परखने की शक्ति, उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र, या उसको कहते हैं विवेक, या थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं, ठीक है, सत्य को परखने की शक्ति, पहली पहली शक्ति, 8 शक्तियों में से पहली पहली शक्ति कौन सी है, सत्य को परखने की शक्ति, किसके आधार पर बनती है, दिल के आधार पे, राइट। दिल अगर सच्ची और साफ है तो हमारी क्या होती है, तीसरी आंख खुल जाती है ना, सत्य को प्रकट शक्ति जागृत हो जाती है, विवेक थर्ड आई ऑफ विजडम जागृत हो जाती है। तो दूसरा आस्पेक्ट कौन सा होगा, बुद्धि का, पहला दिल, दूसरा विवेक, तीसरा जो है, अगर मेरा विवेक ठीक काम कर रहा है, तीसरी आंख खुली हुई है, तो मेरी निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, क्या हो जाती है, निर्णय शक्ति, जिसको आम भाषा में दिव्य बुद्धि भी कह देते हैं, डिवाइन इंटेलेक्ट कह देते हैं, अर्थात यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, कि एक सेकंड में निर्णय मैं सही परखा और एकदम एक सेकंड में निर्णय कर लिया मुझे ये करना है, दिव्य बुद्धि रूपी वो एक लिफ्ट बन जाती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, यस, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, फिर उसके आधार पर क्या होता है, हमारा चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है। तो दिल के कितने, बुद्धि के कितने एस्पेक्ट हो गए, पहला ये बाबा ने बताया, ठीक है ना, मैं नहीं समझता नहीं था बाबा क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, संस्कार क्या है, फिर बाबा ने उन दिनों मुरलियां भी चलाई थी ना, आपको याद होगा 31 दिसंबर 1999 लास्ट सेंचुरी के आखिरी दिन, जब बाबा की मुरली थी ना, उसमें बाबा ने पहले मन को ठीक खोला था, मन के बारे में, फिर बाबा ने दिल के बारे में बात की थी, तो दिल में दिल मैंने बुद्धि के बारे में बात की थी, तो पहले पहले बुद्धि में क्या है, दिल, दूसरा विवेक, तीसरा यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, सही निर्णय करने की शक्ति, जिसे दिव्य बुद्धि भी कहते हैं या डिवाइन इंटेलेक्ट कहते हैं, उसके आधार पर क्या बनता है, हमारा चित्त बनता है, राइट। तो दिल अगर सच्ची साफ है, दिल में सच्ची, मतलब अगर हमें याद रहे, क्या याद रहे, कि हम कौन है, कौन है, शिव बाबा ने, हमारे मीठे शिव बाबा ने मां के रूप में, हमारी मां कौन है? ब्रह्मा मां है क्या? नहीं, हम आरती में क्या गाते हैं शिव बाबा के लिए? क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तो शिव बाबा ही मेरी माँ है, शिव बाबा ही हमारे बाप है, शिव बाबा ही हमारे टीचर हैं, वही हमारे सतगुरु हैं, वही हमारे बंधु हैं, वही हमारे सखा हैं, वही हमारे साजन है, वही हमारे सज्जन है, वही हमारा बच्चा भी है। नौ मुख्य संबंध हो गए ना, तो वही सरल संबंधी हमारा वो है कि तू ब्रह्मा के द्वारा हमको सरल संबंधों की पालना देता है। माँ का संबंध भी ब्रह्मा के द्वारा मिलता है, बाप का संबंध भी ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, टीचर के द्वारा संबंध भी हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं, सतगुरु के द्वारा हमको श्रीमद देते हैं, और बंधु का पार्ट भी किससे, बड़ा भाई का पार्ट किससे निभाते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, और सखा का पार्ट भी ब्रह्मा बाबा द्वारा, और साजन का पार्ट भी ब्रह्मा बाबा द्वारा, और बच्चे का पार्ट भी, सारे पार्ट कहां पर? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो शिव बाबा मां के रूप में ब्रह्मा द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं। क्या देते हैं? ये याद रहता है? याद रहता है? भूल जाता है? भूल जाता है। क्यों भूलना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण, ये दिव्य ब्राह्मण जन्म मर्जी वाला जन्म है ना। जैसे ही हमारा बच्चे का, हम थे इस दुनिया में, हमारा जन्म होता है, लौकिक जन्म होता है, तो हमारे दिल में कौन आ जाता है? बच्चे के, छोटे बच्चे के दिल में कौन आ जाता है? उसकी माँ आ जाती है, राइट? उसकी माँ आ जाती है, और माँ के दिल में ऐसे क्या आ जाता है? उसका बच्चा। पहले वो कुमारी थी, शादी हो गई, प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद जब नौ महीने पेट में बच्चा रहता है, बच्चे के मूवमेंट होते हैं, तो माँ के दिल में क्या रहता है? भले पत्नी है, किसी की बहू भी है, किसी का कुछ संबंध दूर भी है, माता पिता भी भूल जाते हैं उसको, पति भी भूल जाता है, सास ससुर भी भूल जाते हैं, सारा बुद्धि कहाँ लगी रहती है? बच्चे में लगी रहती ना। तो उसके दिल में क्या आ जाता है? बच्चा आ जाता है, और बच्चा देखते ही माँ के पेट में रहता है, उसी से खाना प्राप्त करता है, सब कुछ उससे प्राप्त, पढ़ता भी उसी के पेट में है ना, सब कुछ उससे ही मिलता है, और बच्चे के दिल में क्या आ जाता है? माँ आ जाती है। तो बच्चे के दिल में माँ आ जाती है, राइट? ऐसे ही जैसे बच्चे के दिल में माँ आ जाती है, उसको माँ ही नजर आती है। लेकिन जैसे मान लीजिए माँ है रसोई में खाना बना रही, किचन में, बच्चा बेडरूम में है, बीच में दीवार भी है, कोई खिड़की नहीं है, बच्चा बेड पे है, उसके बच्चे के पिताजी और उसकी माँ खाना बना रहे, बच्चे के पिताजी और उसका बड़ा भाई भी है, तो वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि तो बच्चे को परेशानी होती, क्या होता है? बच्चे की आवाज भी नहीं हो रहा, रो नहीं रहा, तो बच्चा कुछ परेशान है, माँ को तुरंत टच होता है, माँ भाग करके कमरे में जाती है, बच्चा ने यूरिन किया है या कुछ ना कुछ परेशानी होती है, तो जाके देखती है, उसको सोल्यूशन करती है, और सच में बच्चा परेशान होता है। माँ को टच होता है, बाप को टच होता है कभी? क्या बाप को, भाई को टच होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के दिल में, माँ के दिल में बच्चा है ना, और बच्चे का, बच्चे की भावना, उसके वाइब्रेशन बच्चे तक पहुंच जाते हैं, दीवार के बीच में से पहुंच जाते, नहीं पहुंच जाते, राइट? और माँ को टच होता है, माँ तुरंत पहुंच जाती है, कहीं भी हो माँ उसको टच होता है। ऐसे ही हमारे दिल में कौन है? अभी दिव्य ब्राह्मण जन्म होते ही हमारे दिल में कौन आ जाता है? बाबा आ जाता है, राइट? बाबा कौन है? ज्ञान का सागर। ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने समझ। कौन सी समझ? सत्य की समझ, राइट? हम सत्य क्या है? चार ही सत्य हैं। कौन कौन सत्य हैं? ए बी सी डी, ए बी सी डी। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और संबंध, कनेक्शन ना, संबंध, संबंध सत्य है, हमारा आत्मा से परमात्मा का संबंध सत्य है, और ड्रामा सत्य है ना। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? योग माना कनेक्शन, योग माना कनेक्शन, राइट? माना जोड़, राइट? तो योग माना कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट? किससे कनेक्शन? कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य से जुड़ना ही योग है। सत्य की, सत्य क्या है? सत्य की दो विशेषताएं हैं। सत्य एटर्नल है, जन्म और मरण से परे है। सत्य का ना कभी जन्म होता है ना मरण होता है, अविनाशी है, सदा है। दूसरा सत्य अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। सत्य कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा सत्य क्या है? देह हमने अपने बचपन से क्या देखा, अपने आप को देह के रूप में देखा, माँ को किस रूप में देखा, देह के रूप में देखा, बाप को देह के रूप में देखा, या रोल के रूप में देखा, मेरी माँ है, मेरा पिताजी है, ये रोल के रूप में देखा, मेरा भाई है, मेरी बहन है, या टीचर बड़े हुए तो टीचर देखा, या और लोगों को देखा, या तो रोल देखा या तो बॉडी देखा ना, दोनों क्या है, सत्य है असत्य है, असत्य है। तो जो चीज सत्य होती है, जो सदा नहीं होती है, बदलती रहती है, उससे डर पैदा होता है। क्या पैदा होता है, उससे डर पैदा होता है, उससे अशांति पैदा होती है, उससे बेचैनी पैदा होती है, उससे दुख पैदा होता है, बीमारी होती है, राइट। जो सत्य है, जो सदा है, सत्य हजारों साल पहले भी ऐसा ही था, हजारों साल बाद भी ऐसा ही होगा, राइट। सत्य कभी बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है। शरीर हमारा 2.5 किलो 3 किलो का था, बचपन पैदा हुए अभी कितना हो गया, 60 किलो का हो गया। हमारा चेहरा पहले कैसे था, हमारे बाल कैसे थे, अभी कैसे हो गए, बदल रहा है ना, बदल रहा है नहीं? तो बदल रहा है ना, रोल भी बदल रहा है। एक आदमी है, उसका रोल क्या है घर में, वो क्या है, किसी का पति भी है, किसका बाप भी है, किसका बेटा भी है, किसका भाई भी है, और किसका कोई रोल भी है उसका, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ भी रोल है। ऐसे माताओं के भी 5 रोल तो है ना, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी का भाई, किसी की बहन है, और कुछ घर में काम करती है, कुछ और काम भी करती, पढ़ाई भी करती है, कुछ और भी तो काम करते हैं ना, रोल है, 5 रोल तो सबके, बदल देना, अभी कोई तो उसे सत्य नहीं है। इसी से हमें बेचैनी पैदा होती है, इसी से अशांत, चंचल और बेचैन होते हैं ना हमारे। तो हमारा जो है बेसिकली सत्य से जुड़ना ही योग है। तो चलते 4 ही सत्य है, आत्मा सत्य है, उसका रूप बदलता है कभी, और आत्मा मरती है, जन्म होता है, हाँ आत्मा एक शरीर छोड़ी दूसरा लेती है, तो आत्मा तो नहीं मरती, कभी बोलते हैं आत्मा मर गई, ऐसा कभी बोलते हैं, नहीं बोलते ना, बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं। अच्छा एटम बम फट जाए तो आत्मा मर जाएगी, आत्मा के सीधे ऊपर एटम बम मारो, हाइड्रोजन बम मार दो तो मरे, आत्मा मर जाएगी, नहीं मरेगी ना। तो आत्मा कोई चीज मार ही नहीं सकती है, शेर खा जाए आदमी को तो आत्मा मर जाएगी, नहीं मरेगी ना। आग जल जाए, आग भी जल जाए, आत्मा तो नहीं मरेगी। तो आत्मा तो क्या है, अविनाशी है ना। तो चलते फिरते इससे ये जुड़ा रहे कि मैं कौन हूं, मैं देह नहीं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु और परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस परम पिता परमात्मा शिव से सर्व संबंधों की महिंसार वाली याद से कंबाइन, सर्व संबंध मेरे उसके साथ है। बैटरी चार्ज कहां से होती है, आप अपने बेटे को याद करो, बैटरी चार्ज होगी डिस्चार्ज होगी, बताओ। अपनी पत्नी को याद करो, युगल को, बैटरी चार्ज होगी डिस्चार्ज हो जाएगी, आप बताओ। आप अपने बेटे को याद करो, बैटरी चार्ज होगी डिस्चार्ज, कुछ ना कुछ चिंता आएगी, उसकी टेंशन आएगी। पति को याद करो, डिस्चार्ज होगी नहीं हो जाएगी। शिव बाबा को याद करने से बैटरी चार्ज होती है, अर्थात हमारे अंदर आत्मा में साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, पवित्रता आ जाती है, शांति आ जाती है, सच्चा स्नेह आ जाता है, अतिंद्रिय सुख आनंद आ जाता है, आठों शक्तियां आ जाती है। किसी भी देहधारी को याद करोगे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, मोदी को याद करोगे उसकी भी डिस्चार्ज, हाथों में डिस्चार्ज हो जाएगी ना, राइट। किसी को भी याद करोगे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, और एक ही परमात्मा को याद करोगे तो बैटरी चार्ज, राइट, पक्का। तो परमात्मा सत्य है ना, परम सत्य है ना? तो मैं चलते फिरते ये मुझे याद रहे कि मैं कौन हूं, मैं देह नहीं आत्मा हूं, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का पुंज हूं, तो ये ही राजयोग है। इससे आगे भी जाओ कि मैं परमात्मा से कंबाइंड हूं, सर्व संबंधों के महिंसार वाली याद से कंबाइंड, ये राजयोग है, ये उससे भी ऊंचा राजयोग है, राइट। मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ ही है, मेरा कोई और है ही नहीं। जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है क्या क्या याद करते हो, कहीं भी लगा देते हो, सीधा पावर हाउस में लगाते हो ना, या कभी कभी नाक में लगा देते हो, कहीं और लगा सकते हो, लगा सकते हो, चार्ज हो जाएगा मोबाइल, ध्यान से बदल जाता ना, कहीं मिल जाए प्लग मिल जाए तो उसमें लगा दे ना, चार्ज हो जाएगा, नहीं तो यही तो हम करते हैं। तो हमारा कनेक्शन तो एक से परमात्मा से जुड़े तो ही करते ही चार्ज होगा ना, किसी और से चार्ज हो ही नहीं सकता। तो ये हमें ध्यान रखना है, राइट। तो ए बी सी माने संबंध, बिना संबंध के चार्ज नहीं हो सकता। जैसे आपका सड़क पे एक बच्चा मिले 10-12 साल का 15 साल का, कि अंकल जी मुझे ना 10,000 रुपये की बहुत आवश्यकता है, मुझे आप दे दो। दे दोगे आप? नहीं, मुझे बहुत आवश्यकता है, एक इम्पोर्टेंट खर्चा आ गया है। तो क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा कितना दे दोगे? 10 रुपये दे दोगे? ज्यादा ही अमीर हो तो 100 रुपये दे दोगे, किंतु 10,000 रुपये दोगे क्या? जो देगा हाथ उठाओ। एक अनजान बच्चे को जो आपसे 10,000 रुपये कहे कि अंकल जी मुझे दे दो, दे दोगे? नहीं दोगे। और आपका बेटा कहे तो, पिताजी मुझे स्कूल में मेरे पिकनिक पे जा रहे हैं तो हम 10,000 रुपये जमा करने हैं, दे दो, तो क्या कहेंगे? हाँ बेटा जा लो ना 10,000 रुपये, तो 5,000 और भी रख लो रास्ते में खर्चा आए तो। नहीं बेटा, पिताजी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका खर्चा सारा वही देखें। नहीं, फिर भी रख लो, ले आना वापस। नहीं तो संबंध है तो करंट खींच सकते हो, बिना संबंध के कुछ ले सकते हो किसी से? ले नहीं सकते हो। 10 रुपये मिल जाएगा बीक बीक में तो, 5-10 रुपये मिलेगा, नहीं तो कहेंगे भाव भाग जाओ ना। एक बार याद है आपको, एक था ना वो, मैं गुजराती में, एक था एक भिखारी, ऐसे मैं बीच में एक बात सुना देता हूँ। एक ना एक आदमी था, सड़क पे जा रहा था, कई दिन से भूखा था। तो उसने एक आदमी को कहा कि भाई साहब मुझे ना कई दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। तो उसने क्या कहा? उसने कहा टमाटर खाओ। टमाटर समझते हैं? टमाटर खाओ। तो साथ में टमाटर वाले की रेडी लगी हुई थी, टमाटर जानते हैं, टमाटर एक बेच रहा था आदमी। तो उसके बाद चला गया, तो उसको कहा कि भाई साहब मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ टमाटर खाने को दे दो। तो उसने कहा आज तक मैं इतने साल से टमाटर बेचता हूँ, किसी ने ऐसे भीख में टमाटर नहीं मांगे। ये टमाटर आज पहली बार मुझे टमाटर क्यों मांग रहा है? ये आदमी पहली बार मुझे पैसा है। तो कहता है तेरे किसने कहा मेरे पास आने के लिए? कहता है ये आदमी ना, ये आदमी खड़ा ना, इसने कहा। तो कहता है कि ये ना तोतला है, ये काक और टाप है ना। तो सुना, तो आप टमाटर खाते हो क्या? तो सुबह से उठते ही उठते टमाटर खाना शुरू करना चाहिए ना। अमृत वेला मना क्या? टमाटर खाना। मुरली सुनना क्या? टमाटर खाना। चलते फिरते बाबा को याद करना मना क्या? टमाटर खाना। तो लाल लाल हो जाओगे ना अपने, याद रहेगा अभी टमाटर खाना है ना। भीख मांगना बंद है ना, नहीं बाबा ये काम कर दो ये काम कर दो, नहीं हमें क्या खाना है? टमाटर खाना है ना। याद रहेगा अभी कि अमृत वेले क्या करना? उठते ही टमाटर खाना, राइट। तो सुना, तो सत्य माना ABCD ना, आत्मा बाबा संबंध, सब संबंध उसके साथ है। और डी फॉर ड्रामा, अभी तक हमने जो कुछ बोया है, जो कुछ कर्म किया है, अभी तक जो मुझे मिला है मेरे इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, अभी तक मेरे साथ जो कुछ हुआ है मेरे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक, और परमात्मा की डायरेक्शन में हुआ है, राइट। किसी ने मुझे धोखा दिया, दुख दिया, अपमान किया, सुख दिया, जो भी मैंने किया अभी तक, जो एक नियम है, ये बहुत ही यूनिवर्सल नियम है, हम जो बोते हैं हमें काटना पड़ता है। मैंने नीम का पेड़ बोया तो क्या होगा? कड़वी निमोली लगेंगे, नीम के पत्ते कड़वे वाले होंगे, है ना। अभी हम सोचे तो नीम के पेड़ पे आम लग जाएंगे, कभी लगेगा? तो हमने जो बोया है वही हमें काटना पड़ रहा है, राइट ना। और ये संबंध जो है हमारे बने, पिता माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, दोस्त यार दोस्त, पड़ोसी, ये सब क्या है? ये वो कौन है जिनके साथ मैंने कर्म किए? हमें वो हमें ब्याज के साथ वापस कर रहे हैं। और ब्याज कितना? ब्याज कितना? 10 रुपये का ब्याज 100 साल का कितना होता है? 4,18,35,040 रुपया। जिसे 10 रुपये उधार लिया, 100 साल के बाद वो आपका बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, आपको उसको कितना देना पड़ेगा? 10 रुपये देना पड़ेगा साथ में ब्याज। कैसे? 1 करोड़ उसकी पहले पढ़ाई कराएंगे, फिर 1 करोड़ पढ़ाई कराएंगे, फिर 1 करोड़ शादी में लगेगा, फिर 1 करोड़ में उसका बिजनेस सेट करेंगे, तो भी खुश नहीं होगा या खुश नहीं होगी, राइट। फिर क्या करोगे? क्योंकि 18 लाख देना बाकी है, और 18 लाख दे दोगे ना पूरा, तो फिर कहेगा ओम शांति, है ना। फिर वो आपसे बात भी नहीं करेगा, ठीक है। उसकी पत्नी के खबरदार जो अपने बाप से बात की, अपनी माँ से बात की, तो नहीं होता है ना आजकल? नहीं होता, तो प्रैक्टिकल होता ना। तो ऐसे ही किसी एक गाली दिए 100 साल पहले, तो 100 साल को कितनी गाली खानी पड़ेगी? 1,000 तो खानी पड़ेगी। कौन बन के आएगी? अपनी सास बन के आएगी, तो सास फिर सुबह सुबह पर शाम काली रही, आपका बॉस बन के आएगा ना। ये कर्मों की खेती है राइट। और हमारा तो 100 साल की मैं बात कर रहा हूं, तो 25 साल का हिसाब किताब है। कितने साल का है? 25 साल का है। हमने दुखी दिया ना एक दूसरे को, इसलिए हमको दुखी मिल रहा है। हम अच्छा कर रहे हैं, हम दुख नहीं तंग नहीं कर रहे, सामने वाला दुख दिया ही जा रहा है। हम सोचते कभी तो इसको समझ आएगी, कभी तो समझ आएगी, कभी तो रियलाइज करेगा, रियलाइज ही नहीं करता है। करता है रियलाइज? नहीं करते ना। तो वो उनको वो धोखा दिया है। और धोखा किसने? हमने एक बार धोखा दिया 100 साल पहले, इस जन्म में कितने बार धोखा मिलेगा? 1000 बार धोखा मिलेगा। और वहां रहना भी वहीं पड़ेगा, भाग भी नहीं सकते, संबंध ही ऐसा है। धोखा रोज खाओगे, रहना फिर भी खाते रहेंगे, सुबह दोपहर शाम खाएंगे और खाते रहेंगे, वहीं रहना भी पड़ेगा, भाग भी नहीं सकेंगे। ये कर्मों के हिसाब, तो इससे ABCD। तो ये हमारे मनुष्यों के दिल में क्या है? मनुष्यों के दिल में क्या है? देहभान, देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता भाई बहन, यही भरे रहते हैं मनुष्य दिल में, चेतना में भरे रहते हैं ना। और फिर उनको दिल में देह के पदार्थ, प्रॉपर्टी, सब चीजें भरी रहती है। और देहाभिमान से पैदा होने 5 आसुरी स्वभाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे रहते हैं। और फिर इन 5 विकारों के वशों के जो कर्म करते हैं ना, उससे कुछ हमारी आदतें बन जाती है, संस्कार, आलस्य का संस्कार, अलबेलेपन का संस्कार, दूसरों के अवगुण देखने का संस्कार, बदला लेने की भावना का संस्कार, है ना। तो अलग अलग संस्कार, चिंता भय का संस्कार, जल्दबाजी करने का संस्कार, ईर्ष्या द्वेष का संस्कार पड़ जाता है, आदत बन गई है। हम चाहते नहीं है चिंता करना, डरना, पर आदत पड़ गई है। आलस में नहीं रहना चाहते, अलबेलापन नहीं करना चाहते, हम पावरफुल याद में रहना चाहते हैं, कि तो खुद आलस आ जाता है, नींद आ जाती है, अलबेलापन हो जाता है, नहीं आते, नहीं आते, दूसरों के अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बदलने की भावना पैदा हो जाती है, राइट। तो ये जो है हमारे अंदर आदतें बन जाती, तो दिल में उनके यही रहता है। और जैसे ही हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है, तो उसके आधार पर हमारा क्या हो जाता है? शिव बाबा हमारे दिल में आ जाता है, सत्य की समझ का सागर, ABCD का सागर आ गया अंदर। वो अंदर यहां बैठा हुआ है और मुझे कह रहा है, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तुम्हारे अपने कर्मों का जो बोया वही तुमने काटा है, और मेरी डायरेक्शन में काटा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सब पाप कर्म चुक्त हो जाएं, और जिसने तुम्हें दुख, तुमको जिसने दुख, जिसने तुमको दुख, तुमने जिसको दुख दिया था, अब वो तुम ब्याज के साथ दुख देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं, तो इसलिए सहन करने की शक्ति तुम्हें दे रहा हूं, सहनशीलता दे रहा हूं। और किसी भी जन्म में तुम सहन करके समा नहीं सकते थे, तुम 1 का 4 सुनाते उसको नहीं करते थे। किसी जन्म में हमने क्या किया, किसने हमारे साथ थोड़ा सा गलत किया, हमने क्या किया, उससे 4 गुना अधिक किया। कभी सहन किया, समाया तो नहीं, अभी बाबा मिला है तो सहन करके समाने की शक्ति आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, राइट। तो अभी आ सकती, और जन्म में नहीं आएगी। तो ये बाबा हमें समझा रहा है। तो ABCD का सागर है, पवित्रता का सागर बैठा हुआ है, शांति का सागर, शांति माने वर्तमान में रहता है, कभी इसको पास्ट और भविष्य चलता ही नहीं है। प्यार का सागर बैठा है, सबको एक्सेप्ट करता है, चोर, डाकू, आतंकवादी, कोई बाबा का BK हो चाहे नॉन BK हो, कोई भी हो, सबको बराबर स्वीकार करता, सबकी बराबर पालना करता है। अभी नीट का एग्जाम हुआ ना, नीट का एग्जाम समझते हो ना, तो उसमें BK के बच्चे बैठे, नॉन BK के बच्चे बैठे, तो ये थोड़ा ना कहे बाबा BK के बच्चे को पास करा देगा कम पढ़ाई करके भी, और नॉन BK के बच्चे को फेल करा देगा, ऐसे कराएगा। जो ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा ध्यान से पढ़ेगा, उसको पास होगा, नॉन BK भी होगा तो भी फेल हो जाएगा, राइट। ऐसा होता नहीं होता, ये हेराफेरी कर देता है बाबा, BK की पार्शलिटी कर देता है, ऐसे नहीं करता है ना, ऐसे नहीं करेगा ना। तो बाबा कभी आतंकवादी भी डाकू वो बम जाता ना, नहीं पाता अटैक करने, क्या करके जाता है, बम बांध के जाता है, क्या करता है, वो भी भगवान के पास जाता है ना, क्या आज भगवान मेरा काम बहुत अच्छा होना चाहिए, 100 लोग तो मर जाएं, मैं तो मरूंगा साथ में, 100 मर जाए, उसको लगता है भगवान कह रहे जाओ बच्चे जाओ, है ना, लगता ही लगता है। चोर डाकू भी क्या करता है जाने से पहले, तो बाबा सबको बराबर, क्योंकि भगवान को पता है मुझे सबको बराबर पालना देनी है, सूरज है सबको बराबर धूप दे रहा है, कोई कैसे यूज करे कैसे यूज करे उसकी मर्जी है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, उसका फल वैसे मिलेगा, अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा फल जो बोएगा वो काटेगा। इसे भगवान किससे पार्शल, सबको प्यार का सागर कहते हैं। इंसान क्या करता है, जजमेंटल हो जाता है, राइट, जजमेंट करना, ये खराब है, ये अच्छा है, BK है, नॉन BK, ये रोज मुरली में नहीं आता है, ये मुरली में आता है, ऐसे करता है वैसे करता है, तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। इसे प्यार नहीं ना, इसलिए हार्ट अटैक आता है। हमको ऐसा, हमारे दिल को ऐसा वाला प्यार चाहिए ना, सबको एक्सेप्ट करे, है ना। वो अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर है, वो सत्य को प्रकट करने की शक्ति का सागर है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर है, विस्तार को सार में नारी शक्ति का सार कर दे, सारे विस्तार को देर देख लो, विस्तार से अपने आप को समेट कर सार में बैठा है ना ऊपर, ये बार बार नीचे आ जाता है, समेटने की शक्ति का सागर है, समेट के अश्री बन के परम धाम घर में अश्री बाप वहां बैठे ना, अश्री स्थिति का सागर है वो, निराकार स्थिति का सागर है, बीज रूप स्थिति का सागर है, सहन करने की शक्ति का सागर है, समाने की शक्ति का सागर है, सामना करने की शक्ति का सागर है, सहयोग करने की शक्ति का सागर है। तो हमें दिल में बार बार इसको रिवाइज रियलाइज करना चाहिए, अपने दिव्य ब्राह्मण जन्म को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मेरे दिल में कौन बैठा है, बाबा को, बाबा कौन सा स्थान पसंद है, बाबा कहां रहता है, मेरे दिल में रहता है ना, उसको ये स्थान पसंद है। अगर मेरे दिल, मेरा दिल सच्चा और साफ, मतलब दिल में बाबा है, दिल में मतलब मेरे सिर्फ मुझे ये याद है कि मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, तो मेरे दिल में बाबा रहता है, चलते फिरते यही रिवाइज और रियलाइज सच्चे दिल से महसूस करते रहो, मेरे दिल में कौन बैठा हुआ है, ज्ञान का सागर बैठा हुआ है, पवित्रता का सागर बैठा हुआ है। पवित्रता माना क्या, सामने वाले के सत्य स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप में टिक के सामने वाले के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना। बाबा तो है अनादि परम नाम अनादि ज्योतिबिंदु स्वरूप, हमारा भी अनादि ज्योतिबिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करके हमको, हम देखते उस रूप में देखता है हमेशा, हमारा वर्तमान स्वरूप में देखता है, पवित्रता शांति का सागर वर्तमान में, प्रेम सबको एक्सेप्ट करता है, अतीन्द्रिय सुख आत्मा परमात्मा के मिलने का सुख, वो तो सदा ही बच्चों से, बच्चों से बच्चों के मिलन में ही रहता है, जो अच्छे वारिस क्वालिटी के बच्चों के मिलन मिलने में रहता है, आनंद का सागर बियॉन्ड है ना। तो ऐसे बार 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 सत्य को प्रण शक्ति का सागर, अश्री स्थिति का सागर, निराकार, तो बार बार ये रिवाइज रियलाइज करते रहो। सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर, हीलिंग एनर्जी का सागर है, ज्वालामुखी योग अग्नि का सागर है, दिल में कहां बैठा है, यहां दिल में बैठा है, दूर नहीं बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ है, इसको रिवाइज सच्ची दिल माना, ये जिसको चलते फिरते उठते बैठते यही सारा दिन इसी को रिवाइज करते रहो और इसी को महसूस करते रहो, सच्चे दिल से ये रियल है ना, रियल को रियलाइज करते रहो, तो ये सच्चे दिल से, साफ दिल माना, जिसके दिल में बाबा है उसको बाबा की श्रीमत क्या है, पवित्र भव योगी भव, तो जितना पवित्र बनेंगे उतना योगी बनेंगे, और जितना योगी बनेंगे उतना पवित्र बनेंगे, तो जितना पवित्र बनेंगे उतना योगी बनेंगे, राइट। तो ये साफ दिल हो गया ना, तो सच्चे दिल साफ दिल ये निशानी है, ये मेन स्विच है किसका, बुद्धि का, विवेक का। कहते ना जैसे ही बाबा, शिव बाबा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है, हमको दो गिफ्ट मिल जाती है, कौन सी गिफ्ट मिलती है, हमारी बर्थडे गिफ्ट है ब्राह्मण जन्म की, कौन कौन सी है, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र, और दूसरा दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। पर कब एक्टिव होती है दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र, कब एक्टिव होता है, जब दिल सच्ची और साफ हो। तो दिल में थोड़ा भी असत्य आ गया, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं इसकी मां हूं, मैं इसका बाप हूं, इसका पति हूं, इसकी पत्नी हूं, तो क्या होगा, दिल क्या हो गई, सच्ची रही क्या, झूठी, झूठी हो गई, बाबा दिल से निकल गया। तो चलते फिरते बार 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 ये अभ्यास करना है कि मेरे दिल में कौन बैठा है, ज्ञान का सागर, समझ का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। तो दिल सच्ची साफ है तो जैसे हम एटीएम कार्ड होता है ना, हमारा एटीएम कार्ड आता है पोस्ट से आता है ना, पर उसको हम डालें तो पैसे निकलेंगे नहीं, क्या होगा, एक क्या आता है, ओटीपी आता है, डालेंगे ओटीपी डालोगे तो एटीएम कार्ड एक्टिव हो जाएगा ना। तो ऐसे ही जैसे दिल सच्ची होती है, साफ पवित्रता, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी बन के हम बाबा को याद करते हैं, फिर योग लगता है और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बनते होते हैं शुरू में, धीरे धीरे ब्रह्मचारी बनते जाते हैं, और योग लगता जाता है, और योग लगता जाता है, और ब्रह्मचारी बनते जाते, और योग लगता जाता है, राइट, है ना। तो जैसे जैसे ये होता है ना, साफ दिल होती है ना, तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र एक्टिव हो जाता है, तब एक्टिव होता है। तो बुद्धि माना समझ, बुद्धि माना समझ, बुद्धि में कुछ समझ आए ना, तब हमारी बुद्धि क्लियर माना, हमें बुद्धि में समझ आ गई, आठों शक्तियां हमको समझ में आ गई। आठों शक्तियां कहां होती हैं, क्या होती है, बुद्धि के अंदर होती है। सत्य को प्रकट शक्ति कहां पर है, बुद्धि में है। निर्णय कहां से होता है, बुद्धि से होता है। विस्तार को सार में लाने की शक्ति कहां होती है, बुद्धि से होती है। समेटने की शक्ति कहां है, बुद्धि में है। सहन करने की शक्ति कहां है, बुद्धि में है। समाने की शक्ति कहां है, बुद्धि में है। और समेट और सामना करने शक्ति क्या है, बुद्धि में है, और सहयोग करने आठों शक्ति क्या बुद्धि में होती है ना। तो आठों शक्तियों की जब गहराई समझ में आती है ना, तो इसको होते हैं बुद्धि क्लियर हो गई। पर बुद्धि क्लियर कब होगी, कब होगी, जब दिल सच्ची और साफ होगी। तो सबसे पहला चित्त को हमें शांत करने का क्या तरीका है, दिल में दिल सच्ची और साफ है तो बीच में क्या आती है, विवेक और निर्णय करने की शक्ति। तो हमें अगर दिल सच्ची साफ बार बार रिवाइज करोगे, ये बाबा का बताया तरीका है सच्चित आनंद स्वरूप। तो तब बाबा ने कहा बच्चे जब दिल सच्ची साफ होगी तो तीसरी आंख खुली रहेगी, ज्ञान की तीसरी आंख दिव्य दृष्टि, तो आपको मुरली समझ में आएगी। नहीं तो मुरली समझ में नहीं आती है, आप मुरली पढ़ते हो समझ में नहीं आती है, गहराई समझ में नहीं आती है, क्या बाबा कहना चाहता है, मेरे लिए कौन सी चीज अप्लाई करती है, मेरे लिए उस महावाक्य का मेरे लिए अर्थ अलग है, आपके लिए अलग, सबका अलग अलग है ना, मेरी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है, आप अपनी स्थिति के अनुसार। अब हम 9वीं 10वीं बार मुरली सुन रहे हैं, यही 5 साल के बाद रिपीट होती है, जो अपने पहली बार सुनी तो कितनी समझ में आई थी, जैसे जैसे दिल हमारी मन दिल सच्ची साफ होती जाती है, वैसे वैसे हमको मुरली अच्छी समझ में आ रही है। तीसरा नेत्र खुलता जा रहा है, पहले तीसरा नेत्र ऐसे थोड़ा सा खुला था, थोड़ा सा फिर थोड़ा सा और थोड़ा सा, आप ही पूरा खुल गया, खुलता जा रहा है ना राइट। तो अब मुरली समझ में आनी शुरू, गहराई समझ में आनी शुरू हुई है, वही मुरली है, हमें याद भी आती है, हमने 5 साल पहले सुनी थी, हाँ यही तो लाइन थी, किंतु अब समझ में ज्यादा आ रही है। आपने भी देखा होगा हर 5 साल के बाद मुरली अलग ही समझ में आती है, तो अब मुरली अच्छी समझ में आ रही है। तो ये जो है अब मुरली समझ में आती है, अब मुझे समझ में आता है एबीसीडी समझ में आता है, पहले एबीसीडी कितनी गहराई नहीं थी, अब मुझे समझ में आत्मा जो है ना सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का पुंज है, अब मन के माध्यम से एनर्जी बॉडी में जाती है, मन क्या है टीम, संकल्प भावना वृत्ति स्मृति, वो पॉजिटिव हो तो ही तो एनर्जी जाएगी, और फिर शरीर में कब जाएगी, वो यहां से निकल आएगी नीचे पहुंच गई, पर सेल के अंदर क्या होगा, जब ब्रह्मचारी होगा तो ही तो जाएगी, पवित्रता नहीं होगी तो एनर्जी जाएगी बॉडी रिसीव ही नहीं करेगी, जब मेरा सत्संग होगा तो ही तो एनर्जी बॉडी में जाएगी, जब शुद्ध सात्विक भोजन खाऊंगा तो एनर्जी जाएगी ना, मैं पराठा पकौड़ा समोसा खाऊंगा तो क्या होगा, रासिक भोजन हो गया एनर्जी जाएगी नहीं, कितना मर्जी योग लगा लो, कितनी भट्टी कर लो, भट्टी का भट्टा भी कर लो उल्टे लटक जाओ तो भी नहीं जाएगी, ज्वालामुखी योग कर, ज्वालामुखी योग खा रहे हैं, खा रहे हैं भटूरे है ना, क्या खा रहे हैं पाव भाजी खा रहे हैं, तो एनर्जी जाएगी बॉडी नहीं जाएगी, आपका रोग ठीक ही नहीं होगा, बीमारी क्योंकि रोग क्यों होते हैं, सातों एनर्जी के एब्सेंस को योग कहते हैं, रोग कहते हैं रोग, ये बीमारी हार्ट की बीमारी हुई, प्यार नहीं गया हार्ट में तो हार्ट की जानते से ब्लॉक हो गए, पेट में खुशी नहीं गई तो लीवर खराब हो गया, आते खराब हो गई नहीं, फेफड़ों में शांति नहीं गई दमा आ गया, सिर में ज्ञान नहीं गया तो थोड़ी बात में क्या क्या कैसे क्या हेडेक शुरू हो गई नहीं, क्या समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, आनंद नहीं आया तो थायराइड की बीमारी शुरू हो गई, डायबिटीज हो गई नहीं, विस्तार को सामने शक्ति नहीं लाई तो कमर का दर्द शुरू हो गया, कैल्शियम से ठीक नहीं हुआ, विटामिन डी से ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हुआ, बहनों को होता है ना कमर में दर्द बहुत होता है, डिस्क निकल जाती है, शियाटिका हो जाता है, क्यों राई का पहाड़ बनाना आता है उनको, सार को विस्तार में ले जाती है, थोड़ी थोड़ी बात का राई का पहाड़ बना देती है, फिर कैल्शियम खाती रहती है, विटामिन डी खाती है, इंजेक्शन लगवाते तो भी ठीक क्या होती है क्या, तो मतलब जड़ क्या है ना, समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रही है, बात समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है, तो सत्य को परखने की शक्ति है ना, तब दिल में बात सच्ची साफ है तो दिल में सत्य को परखने, तब मुरली तब ए समझ में आया कि आत्मा कैसे शरीर को चलाती है ना, मन के माध्यम से एनर्जी जाती है, किंतु शरीर भी कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य वाला, हमारा शुद्ध हो, सत्संग हो, बाबा और मुरली का संग हो, हमारा भोजन शुद्ध सात्विक हो, है ना, हमारा रोज सैर करने की आदत हो, सैर नहीं करोगे तो भी एनर्जी बॉडी में टॉक्सिन भरे रहेंगे ना, उससे एनर्जी रिसीव भी नहीं करेगी, अच्छी नींद हो, गहरी नींद करते हो, नींद नहीं करोगे कम नींद करोगे, मोबाइल देखते रहोगे तो क्या होगा, रात को देर से सोओगे, देर से उठोगे या जल्दी भी उठोगे तो नींद आएगी तो एनर्जी जाएगी नहीं, बीमारी खत्म ही नहीं होगी, अगर कोई कर्म से आप दवाई खाते हो बीपी की शुगर की कोई और चीज की दवाई वो भी खानी पड़ेगी ना, तो भी नहीं खाओगे तो वो भी एनर्जी बॉडी में नहीं जाएगी, क्योंकि डॉक्टर से हिसाब किताब है, उससे 10 रुपये उधार लिया हुआ है ना, 5 रुपये लिया हुआ, चलो उसका नहीं बिल दोगे तो क्या होगा, एनर्जी बॉडी में जाएगी नहीं, समझे। और बाप क्या है, बाप सातो चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का सागर है, और टीम को टीम सुनाने की टीम पॉजिटिव बना के मुरली सुनाता है, मुरली सुनाता है ना टीम, तभी तो पॉजिटिव होगी, मुरली मुरली से टीम पॉजिटिव होती है। और फिर हमको शिक्षा और सावधानी देता है, बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनो, बाबा कहता है भाई रोज सैर करो, शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, समय पर खाओ, समय पर सो जाओ, समय पर सब देना, क्योंकि उससे करंट कैसे आएगी, सीमाना करंट, कनेक्शन कैसे बनेगा। 4 बातें, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सभ्यता। सत्यता के आधार पे और पवित्रता के आधार पे और निर्भयता के आधार पे और सभ्यता के आधार पे। सत्यता क्या है, अपने अनादि स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप में इसको इमर्ज करके व्यवहार करना, संकल्प बोल कर्म करना। पवित्रता क्या है, अपना अनादि स्वरूप और दूसरे का भी अनादि स्वरूप आदि आदि स्वरूप इमर्ज करके व्यवहार करना, ये पवित्रता है। अपना तो इमर्ज करके व्यवहार किया सत्यता हो गई, सामने का वाला इमर्ज कर लिया तो व्यवहार क्या हो गया, पवित्रता हो गई। निर्भयता क्या है, बुद्धि रूपी आंख परम धाम में बाबा के साथ लगी रहे और मन रूपी आंख कहां लगी रहे, सत्युग में सुखधाम में अपने लक्ष्य पे लगी रहे, मुझे श्री कृष्ण जैसा बनना। तो निर्भयता होगी ना, मेरी बुद्धि भी यहां नहीं मन भी यहां नहीं, तो निर्भयता आगे नहीं आगे। और सभ्यता क्या है, ब्राह्मण कल्चर क्या है, हम सब क्या करते हैं, पवित्रता हमारा कल्चर है, हमारा सत्संग हमारी कल्चर है, शुद्ध सात्विक भोजन हमारी कल्चर है, और देवी गुणों की धारणा हमारी कल्चर है, पावरफुल अमृत वेला हमारी कल्चर है, मुरली सुनना हमारी कल्चर है, और सारा दिन मुरली को रिवाइज रियलाइज करते रहना है ना, लव लेटर है ना, दिल के पास रखना और सारा दिन इसको मन में बार बार रिवाइज, और सोने के बाद सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना, सारा एक लव लेटर बाबा का होता है, हमें मिलता है ना रोज सुबह, और कम से कम 2 पेज का हम लव लेटर बाबा को लिखते हैं, पोता मेल लिखते हैं, बाबा आपने यह कहा था, जैसे कहा था मैंने आज इतना किया, आज ये गलती हो गई, आज ऐसा हुआ, आज मैंने अच्छे से ये किया, अच्छे से ये नहीं किया, उस भाई ने मेरे को ऐसा बोला, मेरे को फील हो गया, राइट। सच्ची सच्ची बात सारी बात, इसको बोलते हैं पोता मेल देना, राइट। चार्ट देना, तो रोज बिना सोए बिना दिए कभी सोना नहीं, ठीक है, पक्का। ये है ब्राह्मण कल्चर। और फिर करंट का कैसे खींचेंगे, उसके लिए 4 बातें, कौन सी 4 बातें, बोला अभी मुरली में आई थी, सत्य की समझ की गहराई, सत्य की समझ की गहराई से, जो बाबा की मुरली ना सत्य की समझ है ना, इसकी गहराई में जाना, जितना महीनता में जाओगे ना मुरली की गहराई में जाओगे ना, बार बार रिवाइज रियलाइज करोगे, उतना क्या होती जाएगी, करंट खींच पाओगे। कर्मों के सिद्धांत, कर्म की फिलॉसफी, मेरे को हार्ट की बीमारी क्यों हो गई, उस व्यक्ति से मेरी क्यों नहीं बनती है, वो व्यक्ति सबको तो बहुत प्यार करता है, मेरे को जाएगा तो मेरे को हमेशा मेरे को कुछ गलत बोलेगा, इंसल्ट कर देगा, अपमान करेगा, क्यों, सबसे तो बहुत प्यार है, सबको तो बहुत प्यार, मेरे उसका हिसाब किताब क्या है, गहराई में जाओ, कर्म सिद्धांत की गहराई में जाओ। वो भी इतने साल से कर रहा है वो मेरे साथ, अभी तक भी कर रहा है, मैं एक बार भी गलत नहीं किया तो भी किए जा रहा है, किए जा रही है, क्यों, गहराई में जाओ, राइट। तो इस जब सत्य की समझ गहराएगी तब धैर्यता आएगी, पेशेंस, मैंने शायद पिछले जन्म में इसके साथ इतना गलत किया हुआ है, क्या वो आत्मा मेरे साथ हिसाब, मेरे कर्मों का हिसाब किताब उसके साथ, तो मुझे क्या करना है, सहन करके संभालना है, तब धैर्यता होगी, राइट। होता ना किसी के साथ हम बहुत तंग करते हैं उसको, हमारी मान आया है, हम क्या करते हैं उसको, रोज तंग करते हैं, रोज कुछ कितना भी अच्छा काम करे तो भी क्या करते हैं, कब बर्तन से साफ नहीं किया, क्या किया तूने, ठीक से सफाई नहीं की, है ना, तो क्या करेंगे अगले जन्म में, वो मार्किन बनेगी तो मैं क्या माया से बनाऊंगा तो क्या होगा, या वो मेरा बॉस बनेगा मैं उसके नीचे बनाऊंगा तो क्या होगा, कितना भी अच्छा काम करूंगा तो क्या होगा, जैसे मैं बर्तन साफ करते मैं फिर भी गंदा बोलता था, गंदा है, गंदा ठीक से साफ नहीं किया, अब क्या होगा, मैंने कितने 1000 बार तो बोला होगा उसको, अब वो कितनी बार मेरे साथ करेगी, समझ रहे हैं ना, कोई ना कोई संबंध ऐसा था मेरा साथ में, इस वजह से मैंने उसको तंग किया था, आज वो मुझे तंग कर रहे, पर मुझे बाबा की याद में कमाइंड लेकर उसको सहन करके समा देना, तब धैर्यता है, तब धैर्य समझेगी ना, धैर्यता, पेशेंस, और फिर गंभीरता, सीरियस होकर करना पड़ेगा करंट खींचने, ऐसे नहीं करंट आती है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया फिर भी मैं बात किए जा रहा हूं, लगा दिया और मैं बात की, छोड़ना पड़ेगा ना उसको, सारे काम से ध्यान हटा के उसको छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं और फिर जब सब कैसा करेंगे तो क्या होगा, फिर सहनशीलता, व्यवहार में सहनशीलता चाहिए। कुछ भी गलत होगा, बहुत सारी बातें तन में भी आएगी, मन में भी आएगी, धन में संबंध संपर्क में आएंगी, दुनिया में भी हो रही होंगी, पर सहन करके संभाल लेना। कुछ भी हो जाए बोलना नहीं, मुंह को चुप रखना, मन में सोचना भी नहीं, बाबा की लगन में नहीं, लगन के लगन को अगन बना लेना, राइट। ज्वालामुखी याद हो जाएगी ना, तब आपके विकर विनाश होते हैं, तो सतब होंगे। तो चार बातें कौन सी हो गई, सत्य की समझ की गहराई, पवित्रता, सॉरी, और धैर्यता, गंभीरता और व्यवहार में सहनशीलता, तब करंट खींच सकते हो, ये तो करंट नहीं आएगी। खाना खाते हो कैसे खाते हो, सीरियस होकर खाते हो, गंभीरता से खाते हो, कि थोड़ा यहाँ खाया, थोड़ा यहाँ खाया, थोड़ा यहाँ लगा, थोड़ा यहाँ, गंभीरता से खाते हो ना, नहीं। पानी भी कहाँ पीते हो, सीरियस होकर पीते हो ना, नहीं, गंभीरता से पीते हो ना, धैर्यता से पीते हो, मुंह ऐसे लगाया पानी, सीधा मुंह ऐसे कर दे, सीधे अंदर आराम से पीते हो ना, तो नाक में चला जाएगा ना। तो ये जैसे ये पानी पीते हो, खाना खाते हो, सीरियस होकर करते हो ना, धैर्यता, गंभीरता और सहनशीलता, उसके पहले सत्य की समझ की गहराई, तब करंट खींच सकते हो। और चौथा, फिर जब ऐसा आ जाता है ना, करंट आने लगती ना, तो आप फुल स्टॉप लग जाता है, कुछ भी हो रहा हो तन में, मन में, धन में, संबंध संपर्क में, दुनिया में, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है। डामा, डामा को फुल स्टॉप लगता है, अपने सत्य में टिके परम सत्य भाव से कंबाइंड हो जाते हैं। जब परम सत्य भाव से कंबाइंड होता है, तो हमें अपना अनादि स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज हो जाता है, बाबा से कंबाइंड होते ही इमर्ज हो जाता है। मैं परमधाम में बाबा के साथ था, और बाबा ऊपर से आया था, तो सत्य में देवी देवता था। जब अपने इस देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करते हो ना, तो इसको बोलते हैं पवित्रता का पहला स्टेप। पवित्रता समझ में आने लगता है, पवित्रता क्या है, ये पवित्रता है। कैसे है पवित्रता, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके हर संकल्प बोल कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, व्यवहार में आना, इसको बोलते हैं पवित्रता, पहला स्टेप। तो दूसरा स्टेप क्या पवित्रता का, अपना तो इमर्ज किया, दूसरे का भी वही अनादि और आदि देवी देवता से इमर्ज करके व्यवहार करना, ये देवी देवता से, ये दूसरे लेवल की पवित्रता। तीसरा, जब रिटर्न जर्नी में जाते हो ना, तो क्या होता है, ऐसी ऐसी फाइलें खुलती हैं, 84वें जन्म में है, 63वें जन्म में जाएंगे, 82 में जाएंगे, 81 में जाएंगे, वो बहन या भाई अभी भी बहुत ठीक रह रहे थे, चलते फिरते ठीक था, अब उससे ऐसा कुछ हो जाएगा, उससे ऐसा लगाव हो जाएगा, या झुकाव या प्रभाव या उसके टकराव में आ जाएंगे, क्या होगा, फंस जाओगे। अनादि स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप का अभ्यास करते करते भी, रोज अमृत वाला मुरली करते करते भी क्या होगा, वो फाइल खुल जाएगी और उसके साथ लगाव हो जाएगा, शुरू झुकाव आ जाएगा, उसके विचार चलने शुरू हो जाएंगे, उसी की तो उसी के प्रभाव में आ जाओगे, या किसी और के प्रभाव में आ जाओगे, या उससे टकराव हो जाएगा। होता नहीं होता, अचानक शुरू हो जाता है। तो तीसरे लेवल की पवित्रता है, चारों का अंश होना भी अपवित्रता है। किसी भी देहधारी से लगाव होना, झुकाव होना, किसी के प्रभाव में आ जाना, या उससे टकराव हो जाना, ये अपवित्रता है, ये तीसरे लेवल की पवित्रता है। चौथे लेवल की पवित्रता, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी रिटर्न जर्नी में जो अचानक होंगी, आपको पता नहीं हो कैसे कहाँ से आ गई, कैसे हो गई, अजाने अनजाने हो जाएंगी, और आपके मन में क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, क्या क्यों कैसे आना शुरू हो जाएगा, वैध संकल्प उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, यज्ञ में कुछ ऐसा हो जाएगा, सेंटर पर कुछ अचानक ऐसा हो जाएगा, तो आपके मन में क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में अचानक कुछ ऐसा हो, जहां कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, और आप सोचेंगे ऐसे कैसा हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, तो वो भी अपवित्रता है ना। तो जो क्या क्यों कैसे से भी मुक्त हो जाता है, चौथे लेवल की पवित्रता, इसको कभी भी क्या क्यों कैसे नहीं आता, वो है चौथे लेवल। उसके बाद काम भी कहा था छोड़ दिया, क्रोध आना भी अपवित्रता है, लोभ आना भी अपवित्रता है, किसी से मोह आना भी अपवित्रता है, अहंकार किसी बात का भी, मैं क्लास कराता हूं, मेरे इतने सारे व्यूज आते हैं, मेरे को ऐसे आता है, मेरे को ऐसा होता है, मेरे ऐसा होता है, मैं इतने देशों का भ्रमण कर लिया, है ना, ये बताते ना, पहले बहने बताते ना, ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, ये भी तो क्या है, अपवित्रता है, ठीक है, सुना, इंट्रोडक्शन देते ना, ये उसमें अहम भाव आ जाए तो अपवित्रता है ना, राइट। फिर आलस्य आना भी, ये पांचवें लेवल की अपवित्रता, छठे लेवल की अपवित्रता क्या है, आलस्य अलबेलापन आना भी अपवित्रता है, सुना, आलस्य करना भी, आत्मा तो सदा अलर्ट है, एक्यूरेट है, आलस्य आना अलबेलाना अपवित्रता है। आत्मा तो सदा गुण दर्शन करती है, हंस है आत्मा तो सदा रहमदिल होती है ना, अगर किसी के प्रति थोड़ा सा भी अवगुण दिखाई दे गया तो यह अपवित्रता है, किसी से थोड़ी बदलाने की भावना आ गई, अपवित्रता है, राइट। थोड़ा आत्मा का व्यवहार क्या होना चाहिए? निश्चय और विश्वास। थोड़ा किसी पर संशय आ गया, अनुमान लगा लिया, अपवित्रता है। थोड़ी चिंता आ गई, अपवित्रता है। थोड़ा डर लग गया, अपवित्रता है। सदा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह होता है ना, पवित्रता वाला, निर्भय होता है ना। जल्दबाजी करना भी अपवित्रता है। मैंने कहा था ऐसे काम होना चाहिए, यह भी अपवित्रता है। सुना, बड़ी दादी कभी भी ऐसे नहीं था, सबकी मीटिंग करती थी, सबका सबकी राय लेती थी। कभी नहीं ऐसे मैंने कहा ऐसे करो, ऐसे नहीं, कभी नहीं था। तो मैंपन आना भी अपवित्रता है ना, क्या है कि नहीं? जरा भी जल्दबाजी, धीरज, धीरेता और इच्छा द्वेष नहीं। क्या विश्व कल्याण की वृत्ति, विश्व कल्याणकारी। तो ये है अलर्ट, एक्यूरेट, गुण दर्शन और रहम दिल, निश्चय विश्वास, बेफिक्र बादशाह और निर्भय और धीरज, धीरेता और विश्व कल्याणकारी। ये है ब्रह्मचारी। क्या है ये? ब्रह्मचारी है, राइट। तो पहला स्टेप क्या है? ब्रह्मचारी, अपने अनादि स्वरूप में रहना, आदि देवी देवता स्वरूप में रह के व्यवहार करना, पहला ब्रह्मचारी। और आखिरी क्या है? ब्रह्मचारी। तो सातवें लेवल की पवित्रता क्या है? संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता, सत्संग माना बाबा और मुरली के अलावा कुछ और संग नहीं करना। तीसरा, शुद्ध सात्विक भोजन, आंखों का भोजन, नाक का भोजन, कानों का भोजन, मुख का भोजन, कैसा शुद्ध सात्विक। खाली मुख का भोजन नहीं, आंखों का भोजन भी, मोबाइल देखना, रील देखना, व्हाट्सएप देखना, ये क्या है? एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तो शुद्ध सात्विक भोजन, तो ऐसी पवित्रता करेंगे। और फिर दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, चार बातें, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सभ्यता। बाकी तो उसके बाद, बाकी अपने बच्चे उसके अपने आप पैदा होते जाएंगे, ठीक है। 32 गुण और पैदा हो जाएंगे, ठीक है। चार बेसिक हैं, उसके बाद और पैदा हो जाएंगे। और पावरफुल अमृत वेला, सारा दिन संगम, सारा अमृत वेला है ना, मुरली सारा दिन, मुरली का मनन चिंतन सारा दिन, और पोता मेर भी सारा दिन। पोता मेर ना थोड़ी सी बात हुई बाबा से शेयर कर ले, थोड़ी सी बात हुई बाबा से, बाबा से बिना पूछे कुछ नहीं करना, कुछ थोड़ा सा हो गया बाबा को तुरंत बताना। तो इसको बोलते ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? हमेशा कनेक्टेड रहते थे ना। नहीं, हम क्या करेंगे? रात को लिखेंगे। रात को लिखने से काम चलेगा क्या? सारा दिन तो पाप कर लिया, फिर रात को लिख दिया, क्या हुआ, है ना। तो ब्रह्मचारी ऐसा जो इसी संपूर्ण पवित्रता। तो ऊपर जाने का पासपोर्ट क्या है? सूक्ष्म में जाने का पासपोर्ट क्या है? सच्ची दिल, साफ दिल। और पवित्रता है वीजा। पवित्रता क्या है? वीजा। ऐसी सच्ची दिल, साफ दिल हो, ऐसे हो, और इतनी पवित्रता, सातवें लेवल की पवित्रता हो, प्रेसिडेंट वाली, प्राइम मिनिस्टर वाली पवित्रता, तो ऐसा वीजा हो तो रेड कार्पेट वेलकम होता है। सुना, एयरपोर्ट पे ही उतरते हो ना, तो वहां का राष्ट्रपति आपको करने के लिए क्या करता है? वेलकम। 21 तोपों की सलामी भी होती है ना। तो सूक्ष्म वतन में जाने की, बाप दादा की गोद में जाने के लिए ये क्या चाहिए फिर हमको? शांति। शांति माने जब ऐसी पवित्रता होगी ब्रह्मचारी, तो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगता है पास को। कुछ भी हो रहा हो, तन मन धन संबंध सब दुनिया में, जैसे बाबा के सामने कुछ भी हुआ, बाबा ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, फुल स्टॉप एक सेकंड में लगाया। और अपने सत्य में टिक के बाबा, परम सत्य बाप से सदा कंबाइंड रहा, कंबाइंड स्वरूप में देखा सबने। तो शांति, कोई विचार चला ही नहीं कभी, खाने को नहीं है, कुछ भी हो गया, बच्चे छोड़ के चले गए, बेटा छोड़ के चला गया, वो चला गया, वो कुछ भी हो गया, कोई शरीर छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबू बाबू ने शरीर छोड़ा, नो प्रॉब्लम, विचार चला। तो ये शांति, ऐसी शांति चाहिए। और फिर ऐसा प्यार, सबसे प्यार, कोई कुछ भी करे, बच्चा कैसा भी हो, गाली दे रहा हो, कुछ भी दे रहा है, कुछ भी हो, सबके सबसे प्यार, सबको एक्सेप्ट करके बराबर पालना करना। तो ये जो शांति है ना, इकोनॉमिक क्लास की टिकट है। और प्यार क्या है? ये बिजनेस क्लास की टिकट है ना, राइट। ऐसी जब ऐसा प्यार विश्व में हर आत्मा के प्रति आ जाए, कुत्ता को काट भी ले ना, उसके प्रति भी शुभ भावना। सुना, क्या होना चाहिए? मच्छर काट ले, मच्छर के प्रति भी शुभ भावना, है ना। ऐसी शुभ भावना है, ऐसा स्नेह है सबके प्रति नहीं, इतना सबके प्रति शुभ भावना। इसलिए बाबा कहते चिड़िया को भी क्या बोलते थे, बच्ची, सांप को भी क्या बोलते थे, बच्चा, है ना, सांप को भी बच्चा बोलते थे बाबा, बच्चे को मानना नहीं, बोरी में डाल के जंगल में छोड़ा है ना, थी निकलते कोबरा निकलते थे यहां जहां हमारी वो थी ना, जहां गाय रखते थे ना पीछे की तरफ दरवाजे के पास, तो सांप निकलते थे कोबरा निकलते थे, बाबा उसके लिए भी क्या बोलते थे, बच्चे को बोरे में डाल के छोड़ा जंगल में छोड़ा, मारने के लिए कभी नहीं कहा। तो ये हमारी मतलब ऐसी सबके प्रति दृष्टि, ऐसा प्यार, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी गिफ्ट कौन सी है, दिव्य बुद्धि, तब अब चित्त शांत होना शुरू होता है, तब विस्तार को शांत, तो देह और देखी दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि कहां पहुंच जाती है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की बोध में पहुंच जाते हैं, राइट। तो अतिंद्रिय सुख का अनुभव होता है, अतिंद्रिय सुख का अनुभव का मतलब क्या है, वहां पर बाबा की बोध में मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, बाप से दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली तो ज्ञान पवित्रता शांति सच्चा स्नेह मिला, और दिव्य बुद्धि मिली तो हम कहां पहुंच गए, बाप की गोद में पहुंच गए, तो हमें क्या हो रहा है, बाबा के साथ का अनुभव, रियल में बाबा के साथ का, इमेजिन नहीं कर रहे, विजुलाइज नहीं कर रहे, रियल में शांति महसूस हो रही है, रियल में सच्चा स्नेह महसूस हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, आंख तो ही छोड़ के गए ना, कई लोग वहां जाके इमेजिन करते हैं हम बाबा की गोद में है, बाबा ऐसे ऐसे प्यार कर रहा है, बाबा ऐसे ऐसे कर रहा है, दिल पे हाथ फेर रहा है, ये थोड़ी ना बाबा का साथ मिलन थोड़ी ना, टिकट तो है नहीं, वीजा तो मेरे को, मेरे पहली पहली बात ऐसे मैंने किया ना, तो बाबा कहता है बच्चा तो मेरे पास, मैं एक महीना योग किया पावरफुल, तो क्या हुआ, 10-10 घंटे भी योग किया, तो बाबा को जब मैं मैसेज दिया ना, मेरे हार्ट की बीमारी थी ना, मेरे को हार्ट की दीवारें मोटी हो गई थी, तो मेरे को फायदा नहीं हुआ, तो मैं दादी के पास दोबारा गया, बड़ी दादी के पास, फिर दादी ने दादी को बोला, बाबा से पूछो तो उसका चार्ट 10-10 घंटे का चार्ट है, 8 घंटे का चार्ट है, 9 घंटे का चार्ट है, तो भी बच्चा कहता कुछ फायदा नहीं हुआ, बाबा ने मुझे कहा था एक महीना योग करो, हॉस्पिटल में नहीं जाओ, घर में बैठ के योग करो, मैंने किया, घंटे घंटे याद का चार्ट भी रखा, तो बाबा ने कहा बच्चा तो एक बार भी मेरे पास नहीं आया, मेरे पास एक बार भी सूक्ष्म में नहीं आया, मैं तो 10-10 घंटे बैठ के बाबा के पास ही बैठा हूं, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, तो मेरे पास तो बाबा कहते एक बार भी नहीं आया, सुना आपने, तो हम भी करते ना योग ऐसे, है ना, विजुलाइज करते हैं बाबा की गोद में गए, नहीं, जब सच्ची दिल साफ हो, पासपोर्ट होगा तब वीजा मिलेगा, वीजा मिलेगा तो क्या मिलेगी, टिकट मिलेगी, ठीक है, वीजा मिलने के बाद ही टिकट मिलती है ना, ये तो टिकट नहीं मिलती, टिकट तब मिलेगी, और टिकट कौन सी, शांति और प्यार की टिकट होगी ना, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होगी, तब इतनी देर में सूक्ष्म शरीर हमारा मन रूपी सूक्ष्म शरीर भी क्या हो जाएगा, टीम हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर और उसकी ड्रेस कौन सी है, ये संस्कार, सभ्यता, है ना, चार बातें ना सभ्यता में, पवित्रता और सत्संग, सात्विक भोजन, दैवी गुणों की धारणा, अमृत वेला, मुरली, पावरफुल साधन, टेंशन और सोने के पहले वेंटिलेशन, तो ड्रेस तैयार हो गए, चमकीली ड्रेस तैयार हो गए, बाबा की गोद में पहुंच गए, और बाबा के साथ वहां से फीलिंग होती है, रियल में फील होता है कि बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, तो माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सदर्शन चक्रधारी सतुर के रूप में त्रिका, फिर लोकीनाथ है ना सतगुरु, और बंधु के रूप में सारा बोझ, लौकिक अलौकिक बोझ दे दिया, सखा के रूप में हर दिल की बात बाबा को सुना देते, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी को सुना नहीं सकते, बाबा को सुना देते, फिर साजन बन जाता है बाबा, देवगुण सजा देता है, सज्जन के रूप में 16 कला संपूर्ण बना देता है, मतलब हर कुल में, आज का वरदान था ना, हर कुल में 100%, इतनी मधुरता, सामने वाला कितना मर्जी गाली दे तो भी मधुरता रहेगी, इतनी सहनशीलता, कुछ भी हो जाए, गला भी काटने को आ जाए, डंडा मार रहा हो, डंडा भी उठा के वापस दे, भाई साहब और मारते रहो, है ना, इतनी सहनशीलता, इतना आश्चर्य बन जाओ किसी को, उसको वही ना हो, इतनी सहनशीलता कि उसको खुद ही मतलब अपने आप लगेगा ये मैं क्या किसको गुस्सा कर रहा हूं, तो मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, गुस्सा करे जा रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं वो क्या गुस्सा कर रहा है ना, इतना चेयरफुल मस्जिद मुक्त है ना, कला बन जाए उसको, बता 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रमोदन, तो सर्जन जो बनाता है, इटर्नल साथ रहता है, तो उसको हम क्या बना देता है, हमको ऐसा बना देता है, और तब हम ऐसा बनते हैं, और फिर बच्चा, फिर बाप हमारा बच्चा बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा, जहां जीत वहां जन्म, तो किसी पतित का बाबा बच्चा बनेगा नहीं, जब ऐसी स्थिति बने तो बाबा हमारा बच्चा है, सुख देने वाला बच्चा बनता है, तब आनंद की स्थिति आती है, तब आनंद की स्थिति आती है, राइट। आनंद माना सर्व संबंधों के महीन साल वाली याद, लवली स्थिति, जब अश्विनी बनते हैं तो लवली, मतलब तीन से एक, तो सूक्ष्म वतन की स्थिति क्या, तीन से एक, ड्रामा को फुलस्टॉप लगाया, सूक्ष्म वतन बाबा के सामने अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही, बाबा के साथ संबंधों की अनुभूति, और दो से एक क्या बन गए हम, आनंद की स्थिति है, बस बाबा रह गया, लवलीन हो गए, समा गए, अब क्या फिर अश्विनी स्थिति शुरू होती है, पॉइंट नाइन माना, तो विस्तार को सार्वजनिक शक्ति क्या है, बाबा की गोद का अनुभव करना, सार है बाबा की गोद और विस्तार है दुनिया, और वहां से भी मन बुद्धि को समेट के अश्री बन के परमधाम में अश्री बाप से कंबाइन हो गए ना, यह समेटने की शक्ति है, वहां से अश्री बने, अश्री बन के परमधाम में अश्री बाप से कंबाइन हुए, ये चित्त को शांत करने की विधि बता रहा हूं, ठीक है। तो फिर अश्री बन के बाबा से कंबाइन हुए तो हमारा क्या एकदम रिलैक्सेशन जैसा होता है, रिलीज फिनोमेना होता है ना, हम अश्री बन गए, देह से अलग हो गए एकदम से, अश्री बाप से, बाप क्या है हमारी 0.9 है, वो 0 है शिव बाबा, अश्री 0 है ना, तो हम उसमें खोते जा रहे हैं, उसमें कमाते जा रहे हैं, अश्री बनते जा रहे हैं, संकर्म नहीं चल रहे, बस महसूस हो रहा है, और हम एकदम हमारी बॉडी में इधर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, है ना, कुछ केमिकल निकलते हैं, एंडोर्फिन एंड कैफेडिन निकलते हैं, सेरोटोनिन निकलता है, और हमारे ऑक्सीटोसिन निकलता है, डोपामिन निकलता है, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक्सटेसी की फीलिंग, बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग हो रही होती है, तो हमारे देख के कर्म भोग, मान लो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, कमर की हड्डी खराब है, घुटने खराब है, या कैंसर है उनका मेरे को, फेफड़े खराब है, सिर दर्द हो रहा है, एकदम देख के कर्म भोग क्या होते हैं, सहन करने की शक्ति आ जाती है, कर्मों के हिसाब किताब, कोई मुझे मेरे संबंध में गलत कर रहा है, मेरे साथ बहुत बड़ा लॉस हो गया पैसे का, उनको सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई, मतलब सहनशीलता, चारों शक्ति मिलकर सहनशीलता बनती है, तो हमें सहन के समान है, तो कुछ होता ही नहीं, जैसे अशरीरी हो गए, बेहोश हो गए, तो ये चारों शक्तियां आ गई ना, तो छह शक्ति कौन सी हुई, विस्तार को सामने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, तो छह शक्तियों से मिलकर चित्त बनता है। अब चित्त क्या हो गया, दिल सच्चा है, विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, तो क्या हुआ, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो गया, जो दिल में है वो चित्त में आ गया, राइट। और सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया, हीलिंग एनर्जी आ गई, सातों एनर्जी का बैलेंस होता तो हीलिंग एनर्जी आती है, तो मेरा चित्त में जो था बेचैनी हील हो गई, राइट, एकदम ज्वाला स्वरूप याद हो गई, तो सारा चित्त में जो बेचैनी थी ना, पुराने थे ना हिसाब किताब सारे, अब चित्त शांत, अब चित्त शांत हुआ ना, तो चेतन मन में कौन सी फाइल खुलेगी, अब मुरली की फाइल खुलेगी, अब कौन सी फाइल खुलेगी, तब मुरली की, तब मुरली का मनन चिंतन, तब मुरली फील होने लगती है, आज बाबा ने यह कहा था, सत्युग में कौन सी दशा है, बृहस्पति की, और द्वितीया में शुक्र की, और द्वापर में मंगल की, और कलयुग में शंचर की, और अभी अंत में लास्ट के 100 साल में 50 साल में राहु की, राइट। तो बुद्धि यहां जाने लगती है, हाँ यही राहु की दशा है, अभी बाबा क्या करने हैं, वापस बृहस्पति की दशा बैठे, बाबा दिल में आ गया तो बृहस्पति की दशा बैठ गई, तो बाबा की एक एक बात अंदर से बजने लगती है, संकल्प भावना बनते हैं, भावना से वाइब्रेशन बाबा के पास जाते हैं, बाबा से मल्टीप्लाई होकर पदम गुणा मल्टीप्लाई मेरे पास आते हैं, तो कैचिंग पावर टचिंग पावर होती है, मैं उसी में घूमता रहता हूं, जिससे पंखा चलता है ना, तो क्या होता है, अत्यंत सुख आनंद पैदा हो जाता है, आनंद शरीर फिर निराकारी, निराकारी स्थिति में विक्रम विनाश में शुरू हो जाते हैं, तो फिर वायुमंडल बनता है, उसमें रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, तो मन मनाभव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, चित्त हमारा शांत एकाग्र आनंदमय बना, तो चिंतन तो फायदे खुलते हैं, सारा दिन जो दिल में होता है उसकी याद अपने आप आती है, याद करना नहीं पड़ता, फिर हमें क्या होगा, रेगुलर हमारी स्थिति हमेशा ऐसी बनती जाएगी, ओके, यस। टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, चलिए 5 ही मिनट बचे, तो समझे, सचित आनंद स्वरूप, तो ऐसी स्थिति हमको बनानी है, अब 5 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं।